नेक्स्ट कोल्चिसिन की अवेलेबिलिटी देख लेते हैं। कोल्चिसिन ब्रांड नेम कोल्चिसिन के नाम से ही आती है और इस 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है और कुछ टैबलेट्स पे 500 माइक्रोग्राम लिखा होता है। बेसिकली वो 500 माइक्रोग्राम 0.5 मिलीग्राम के ही इक्वल है और इसकी प्राइस 169 रुपीज़ है पर 100 टैबलेट्स। सो इट इज़ वेरी चीप ड्रग और ईच टैबलेट ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ कॉस्ट करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे। एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं बेसिकली मेनली इसके GIT के हैं। GIT में नोज़िया, वोमिटिंग, वाटरी डायरिया, अबडोमिनल पेन और ब्लॉटिंग ही करती है। इसकी जब हम टॉक्सिसिटी डिस्कस करते हैं तो उसमें हम टॉक्सिसिटी को डिवाइड करते हैं स्टेजेस में। उसमें एक्यूट स्टेज है और क्रॉनिक स्टेज है। एक्यूट स्टेज एज अ नेम इंडिकेट्स के एक्यूट ओवरडोजेज की वजह से आती है और विद इन फ्यू आवर्स ही डिवेलप हो जाती है, मोस्टली फर्स्ट 12 आवर्स में। तो पेशेंट को इमीडिएट जो सिम्टम्स आते हैं, पहले बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट होती है माउथ में और थ्रोट में और उसके बाद टिपिकल पिक्चर आती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस की। ये इसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की पिक्चर आती है। उसमें पेशेंट को वाटरी डायरिया होता है, वोमिटिंग, अबडोमिनल पेन और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आफ्टर 24 to 72 आवर्स, मतलब एक्यूट स्टेज के गुजर जाने के बाद 24 to 72 आवर्स में मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसमें सेप्सिस डेवलप हो जाती है। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बोन मैरो फेलियर है, रीनल डिसफंक्शन है, हिपैटिक डैमेज है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, मसल वीकनेस है, मायोकार्डियल डैमेज है, DIC है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज, हाइपोवोलेमिक शॉक अल्टीमेटली। तो 24 to 72 आवर्स के बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर डिवेलप हो जाता है, इसकी टॉक्सिसिटी है उसमें। तो बेसिकली इसका जो पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, GIT को। दैट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ द अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है। दूसरा ये कि इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में पेशेंट को अगर नॉन हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसमें अवॉइड करना है और दूसरा ब्लड डिस्क्रेजियस हैं तो उसमें अवॉइड करना है। और किन लोगों में नहीं देनी, प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, पेशेंट को सिग्निफिकेंट रीनल और हिपैटिक डिसफंक्शन है उसमें अवॉइड नहीं करनी। प्रेगनेंसी में कैटेगरी डी ड्रग है तो लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस देखते हैं इसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइटोक्रोम P3A4 सिस्टम के थ्रू इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो सारी ड्रग्स जो साइटोक्रोम P3A4 को इनहिबिट करती हैं उसकी एक लिस्ट आप लोग याद कर लें, वो हर ड्रग पे एप्लीकेबल होगी। जो साइटोक्रोम पी के इनहिबिटर्स हैं ना, साइक्लोस्पोरिन है, उसमें एरिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, किटोकोनाजोल है, एजोल्स हैं, मतलब एंटीवायरल ड्रग्स हैं, विरापामिल है, ग्रेपफ्रूट जूस है, ये सारे इनहिबिटर्स हैं। ये इनहिबिटर्स जो है ना, इसके साथ इसकी इंटरेक्शंस होती हैं, तो जब ये कंकोमिटेंटली बंदा पेशेंट ये ले रहा होता है इनमें से कोई ड्रग, तो ये टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती हैं। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात इंटरेक्शन में ये है कि जब पेशेंट कोई स्टैटिन ले रहा होगा तो उसमें रिस्क ऑफ मायोपैथी इंक्रीज हो जाता है, तो स्टैटिन के साथ कोल्चिसिन नहीं देनी। प्री ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग क्या करनी है, उसमें वही बेसलाइन सारे इन्वेस्टिगेशन हैं, उसमें फुल ब्लड काउंट है, LFTs हैं, RFTs हैं, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है और प्रेगनेंसी टेस्टिंग करेंगे टू एक्सक्लूड द प्रेगनेंसी। डोजेज रजीम इसकी बहुत आसान है, 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, वही 0.5 mg OD से हमने स्टार्ट करनी है। फ्यू वीक्स तक पेशेंट 0.5 mg OD लेता रहेगा और उसके बाद हमने ग्रेजुअली इसकी डोज इंक्रीज करनी है एज द पेशेंट टॉलरेट्स। उसमें 0.5 mg BD या TDS कर सकते हैं कुछ वीक्स के बाद। और इसकी मॉनिटरिंग में वही इन्वेस्टिगेशन जो हमने प्री ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग में की थी वही हमने मॉनिटरिंग में करनी है। उसमें CBC, LFTs, RFTs और यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है, वो हमने मंथली कराना है फॉर सेवरल मंथ्स और उसके बाद हमने 3 मंथली कराना है। तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। मंथली कराने हैं हमने CBC, LFT, RFT और यूरिन कंप्लीट और कुछ महीनों के बाद हमने 3 मंथली पे उसको शिफ्ट कर देना है। सो थैंक यू वेरी मच।